एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार और ग्रंथसार में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के पन्नों में उतर रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ी बल्कि जिसकी चमक शायद और बढ़ी है।
हाँ बिल्कुल,
शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का कालजयी उपन्यास परिणीता।
क्या कहने परिणीता, नाम सुनते ही जैसे एक पूरी दुनिया आंखों के सामने घूम जाती है। शरद चंद्र जी, जिन्हें लोग इतने प्यार से कोथा शिल्पी कहते थे।
हाँ, कहानी गढ़ने वाला कलाकार।
बिल्कुल, उनकी कलम में ना एक अजीब सा जादू था। वो बहुत ही साधारण किरदारों के जरिए मानवीय भावनाओं की इतनी परतें खोल देते थे, खासकर उन आवाज़ों की, मतलब जिन्हें समाज अक्सर अनसुना कर देता है, जैसे महिलाएं या हाशे पर खड़े लोग।
सही कहा, उनका लिखना सिर्फ कहानी कहना नहीं था, वो तो समाज की नब्ज पर उंगली रखने जैसा था। समाज सुधार का एक जुनून था उनमें।
हाँ, और परिणीता जो 1914 में आई, हमें ले चलती है 20वीं सदी की शुरुआत के कलकत्ता।
वो बंगाल नवजागरण का बड़ा दिलचस्प दौर था, है ना? एक तरफ पुरानी सामाजिक रीतियां थीं जड़ जमाए हुए,
और दूसरी तरफ वो आधुनिक विचारों की एक नई हवा सी बहने लगी थी। इसी उथल पुथल के बीच ये कहानी पनपती है।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि परिणीता के इस ताने बाने को समझें, किरदारों के दिल की धड़कनें सुनें, उनके मनोभावों को महसूस करें
और उन सवालों पर भी गौर करें जो शरद चंद्र ने इतने साल पहले उठाए थे और जो शायद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।
तो चलिए उस कलकत्ता की गलियों में चलते हैं, 20वीं सदी की शुरुआत, मध्यम वर्गीय बंगाली समाज।
हाँ, और माहौल इतना अपना सा लगता है। शरद चंद्र की यही तो खासियत है, वो पूरा परिवेश जैसे जीवंत कर देते हैं। लगता है जैसे हम पड़ोस के घर की खिड़की से ही झांक रहे हो।
और इस माहौल के बिल्कुल केंद्र में है एक बहुत ही नाजुक, एक अनकहा सा रिश्ता, है ना?
हाँ, दो पड़ोसी परिवार। एक तरफ है ललिता, 13-14 साल की एक अनाथ लड़की जो अपने चाचा गुरुचरण के साथ रहती है। चाचा थोड़े सिद्धांतवादी हैं पर आर्थिक रूप से काफी संघर्ष कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ है शेखरनाथ रॉय, पास के ही अमीर प्रतिष्ठित रॉय परिवार का बेटा। पढ़ा लिखा है, संवेदनशील भी, पर थोड़ा जिद्दी भी कह सकते हैं। उनकी दुनियाएं कितनी अलग हैं, सामाजिक रुतबे में, आर्थिक हैसियत में, हर तरह से।
और यहीं से उपन्यास का जो केंद्रीय संघर्ष है वो जन्म लेता है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ दांव पर लगा है।
निश्चित रूप से ये टकराव है उस मासूम अनकहे प्यार और समाज की जो ऊंची दीवारें हैं उनके बीच। ये संघर्ष है आर्थिक तंगी और पारिवारिक इज्जत के बीच।
और शायद सबसे गहरा संघर्ष तो इंसान के अपने अंदर ही चलता है।
बिल्कुल, उसके अपने प्यार और उसके अपने अभिमान, मतलब झूठे गर्व के बीच। शरद चंद्र जैसे पूछ रहे हो, क्या ये मोहब्बत, ये आत्मसम्मान समाज की बनाई इन बेड़ियों को तोड़ सकता है, या इंसान अपनी ही बनाई उलझनों में फंसकर रह जाता है?
किरदारों की बात करते हैं
जी,
क्योंकि शरद चंद्र के किरदार महज पात्र नहीं लगते, वो तो जीते जागते इंसान लगते हैं। शुरुआत ललिता से करते हैं।
हाँ, ललिता वो उपन्यास की धुरी है, उसका नैतिक केंद्र कह सकते हैं। कम उम्र में अनाथ हो गई, चाचा के साय में पली, लेकिन उसकी मासूमियत में भी एक गजब की समझदारी है, स्वाभिमान है और निष्ठा है।
वो उस दौर की नई स्त्री की आहट जैसी लगती है, पर अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से भी जुड़ी हुई है।
और उसका जो भावनात्मक सफर है वो कमाल का है। उसमें कोई तूफानी उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि एक शांत नदी जैसी गहराई और ठहराव है। शेखर के लिए उसका प्यार वो मतलब बिना शर्त वाला है, पर जब वक्त इम्तिहान लेता है, जब उसे अनदेखी सहनी पड़ती है, अपमान सहना पड़ता है,
तो वो टूटती नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाती है। वो अपनी पीड़ा को बहुत गरिमा के साथ सहती है, अपने अंदर के सच पर, अपनी उस अनकही प्रतिज्ञा पर अड़िग रहती है। ये जो खामोश लचीलापन है ना उसका, वो उसे बहुत शक्तिशाली बना देता है।
दूसरी तरफ शेखर है
जी,
अमीर है, पढ़ा लिखा है, संवेदनशील भी कह सकते हैं, लेकिन उलझा हुआ सा लगता है।
हाँ, जैसे दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है, पुरानी मान्यताएं और नए विचार, दिल की आवाज और समाज का डर, खासकर अपने पिता नवीन रॉय का।
उसमें एक अजीब सी अनिर्णय की स्थिति दिखती है ना, मतलब वो फैसला नहीं कर पाता।
शेखर का द्वंद्व बहुत मार्मिक है। देखिए, उसका प्यार सच्चा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस प्यार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का बोझ है, परिवार के रुतबे का दबाव है, और फिर एक जलन, एक असुरक्षा भी है जो हावी होने लगती है।
और उसका अभिमान, हाँ, उसका वो अभिमान जिसे शायद हम आज की भाषा में फ्रिजाइल ईगो कह सकते हैं, वो उसे सच देखने ही नहीं देता। वो छोटी छोटी बातों को, अफवाहों को पकड़ लेता है और अपने ही हाथों गलतफहमियों की दीवार खड़ी कर लेता है। उसका सच तक पहुंचना एक धीमी दर्दनाक प्रक्रिया बन जाता है।
कहानी में और भी अहम किरदार हैं, जैसे ललिता के चाचा गुरुचरण।
गुरुचरण एक ईमानदार उसूलों वाला इंसान, पर वक्त की मार झेल रहा है। गरीबी और कर्ज का बोझ जैसे उनकी कमर तोड़ रहा है। वो ललिता से बेहद प्यार करते हैं, पर उनकी बेबसी, उनकी लाचारी ही कहानी में वो संकट पैदा करती है जो सब कुछ बदल देता है।
हाँ, उनके कुछ फैसले जो शायद वो नेकनीयति से ही लेते हैं।
बिल्कुल नेकनीयति से, पर अनजाने में वो शेखर और ललिता के बीच शक और दूरी का बीज बो देते हैं। उनकी स्थिति उस दौर के मध्यम वर्ग के संघर्ष का आईना भी है।
और फिर एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो कहानी को एक नया मोड़ देता है, गिरीन।
हाँ, गिरीन पढ़ा लिखा, उदारवादी, ब्राह्मो समाज से जुड़ा हुआ, मतलब उस सुधारवादी आंदोलन का हिस्सा जो मूर्ति पूजा और जाति प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ था। गिरीन दयालु है, समझदार है और निर्णायक भी।
उसका किरदार बड़ा दिलचस्प है,
है ना? वो गुरुचरण की मदद के लिए आगे आता है बिना किसी स्वार्थ के। ललिता के प्रति उसका व्यवहार बहुत सम्मानजनक स्नेह से भरा है। एक तरह से देखें तो वो शेखर के चरित्र का फॉयल है, उसका विपरीत।
लेकिन विडंबना देखिए।
हाँ, विडंबना यही है कि उसकी यही अच्छाई, उसकी यही उदारता अनजाने में शेखर की ईर्ष्या को और भड़का देती है और उन दोनों प्रेमियों के बीच की खाई को गहरा कर देती है।
हालांकि अंत में वही उनके मिलन का जरिया भी बनता है।
बिल्कुल, उसका नैतिक बल कहानी को एक अलग आयाम देता है।
और आखिर में शेखर के पिता नवीन रॉय, उन्हें खलनायक कहना शायद ठीक ना हो।
नए खलनायक नहीं, पर वो उन सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का प्रतीक है जिनसे कहानी के मुख्य पात्र जूझ रहे हैं। कठोर हैं, सत्तावादी हैं और पूरी तरह से भौतिकवादी।
उनके लिए रिश्ते मतलब दौलत और रुतबा।
हाँ, बिल्कुल। गुरुचरण और उनके परिवार के प्रति उनका जो तिरस्कार है वो साफ छलकता है।
तो ये हैं वो धागे जिनसे कहानी का ताना बाना बुना गया है। अब देखते हैं ये कहानी आगे कैसे खुलती है।
शुरुआत होती है बचपन के दिनों से, ललिता और शेखर के बीच एक गहरा, बहुत मासूम सा लगाव। पड़ोस की छतें उनकी साझी दुनिया बन जाती हैं। वहीं साथ पढ़ना, संगीत सुनना, शरारतें करना, कभी कभी लड़ना झगड़ना।
और शेखर का ललिता पर एक तरह का मालिकाना हक जताना।
हाँ, वो भी। ये सब उनके रिश्ते की नींव रखता है।
ये शुरुआती दौर उनके अटूट बंधन को दिखाता है और ये मासूमियत बाद में आने वाले तनाव और दर्द के बिल्कुल उलट है, और शायद इसीलिए वो और ज्यादा मार्मिक लगती है बाद में।
बिल्कुल। और फिर आता है वो एक पल, वो एक खास पल जो उनके रिश्ते को एक अनकहा लेकिन बहुत गहरा मतलब दे देता है।
आप उस माला वाले प्रसंग की बात कर रही हैं?
हाँ, एक दिन ललिता बहुत प्यार से फूलों की माला गूंथकर शेखर की तस्वीर पर डाल देती है और संयोग से शेखर उसी वक्त वहां आ जाता है। वो देखता है, एक पल के लिए ठिठकता है और फिर
बिना एक शब्द कहे वो माला तस्वीर से उतारकर खुद पहन लेता है।
कोई रस्म नहीं, कोई गवाह नहीं,
कुछ नहीं,
बस एक खामोश इशारा, एक मौन स्वीकृति। इसे ही शायद गांधर्व विवाह का प्रतीक माना जा सकता है। खासकर ललिता के मन में ये पल उनके रिश्ते को एक पवित्र बंधन में बांध देता है।
और यहीं शरद चंद्र समाज से गहरा सवाल पूछते हैं कि विवाह का असली मतलब क्या है? क्या वो समाज की मुहर है या दो आत्माओं का मौन समझौता? ये गांधर्व विवाह वाली बात कहानी के दिल में उतर जाती है।
जहाँ व्यक्तिगत प्रतिज्ञा सामाजिक रिवाजों से ज्यादा मायने रखती है, पर ये निजी दुनिया ज्यादा देर बाहरी दबावों से अछूती नहीं रह पाती। गुरुचरण की आर्थिक मुश्किलें बढ़ती जाती हैं।
नवीन रॉय कर्ज वापस मांगते हैं।
हाँ, और जमीन जायदाद, घर, सब कुछ दाव पर लग जाता है।
यहाँ आर्थिक हैसियत और सामाजिक रुतबे का जो अंतर है वो एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। कैसे पैसे की तंगी रिश्तों में तनाव और कड़वाहट घोल सकती है, ये शरद चंद्र बड़ी बारीकी से दिखाते हैं।
इसी मुश्किल घड़ी में गिरीन एक फरिश्ते की तरह आता है। वो गुरुचरण की हालत देखकर द्रवित हो जाता है और चुपचाप उनका सारा कर्ज चुका देता है, उन्हें नवीन रॉय के उस अपमानजनक शिकंजे से आजाद कर देता है।
गिरीन का ये कदम उसे उस दौर के सामाजिक ढांचे में एक, कह सकते हैं, एक एक्सेप्शन बना देता है, जहां नवीन रॉय जैसे लोग सिर्फ पैसे और रुतबे को तवज्जो देते हैं,
वहीं गिरीन इंसानियत और करुणा को। ये शेखर के लिए भी एक चुनौती है जिसे वो समझ नहीं पाता।
हाँ, समझ नहीं पाता, बल्कि शायद गलत समझ लेता है।
बिल्कुल, गिरीन की ये निस्वार्थ मदद शेखर के अभिमान को चोट पहुंचाती है। उसे लगता है कि ललिता के परिवार ने उससे मदद ना मांगकर एक बाहरी आदमी का सहारा क्यों लिया। उसके मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। वो गिरीन के इरादों पर सवाल उठाने लगता है।
और यहीं पर अभिमान और संवादहीनता का वो जहरीला खेल शुरू होता है। शरदचम दिखाते हैं कि कैसे झूठा गर्व प्यार का नकाब पहनकर आता है और एक फुसफुसाहट को भी बेवफाई का सबूत बना देता है,
जिससे सालों की खामोशी और दर्द पैदा होता है। एक बात जो कही जा सकती थी वो अनकही रह जाती है।
और मामला और पेचीदा हो जाता है।
हाँ, जब गुरुचरण गिरीन के एहसानों से दबकर और उसके भले स्वभाव को देखकर उसके साथ ललिता का विवाह करने का प्रस्ताव रख देते हैं। ये तब होता है जब वो लोग कुछ समय के लिए देहात गए होते हैं।
गिरीन भी शायद ललिता को पसंद करने लगा था।
हाँ, लगता तो है, लेकिन ललिता अपनी उस खामोश प्रतिज्ञा की लाज रखते हुए बहुत शांति और दृढ़ता से इस रिश्ते से इनकार कर देती है। पर हाय रे किस्मत, इस अधूरे प्रस्ताव की भनक एक अफवाह बनकर कलकत्ता पहुंच जाती है।
ये देखना कितना जरूरी है कि मुश्किल हालात में भी ललिता अपनी गरिमा और अपना निर्णय लेने की क्षमता नहीं खोती, वो परिस्थितियों की शिकार नहीं बनती।
बिल्कुल, वो अपने आंतरिक सच पर कायम रहते हैं। ये उस दौर में स्त्री चरित्र का एक बहुत मजबूत चित्रण है।
लेकिन अफवाहें तो आग की तरह फैलती हैं। शेखर, जो पहले ही शक और जलन की आग में जल रहा था, इन अफवाहों को सच मान बैठता है। जब ललिता कलकत्ता लौटती है तो उसका सामना एक बदले हुए, रूखे और इल्जाम लगाते शेखर से होता है।
वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं।
बिल्कुल नहीं। ललिता का दिल टूट जाता है, पर उसका स्वाभिमान उसे झुकने नहीं देता। वो चुपचाप पीछे हट जाती है। जल्दी गुरुचरण का परिवार शहर छोड़कर चला जाता है और फिर शुरू होता है सालों का लंबा इंतजार, खामोशी का बोझ, अनसुलझे सवाल और गहरा दर्द।
ये जो सालों का अंतराल है, ये दिखाता है कि संबंध की एक छोटी सी चूक, अभिमान का एक छोटा सा पल कैसे जिंदगी के कितने कीमती साल बर्बाद कर सकता है।
हाँ, एक गलत फहमी मीलों की दूरी बन जाती है। कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है कई सालों बाद।
कई सालों बाद, हाँ। शेखर अब कोलकाता का एक जाना माना वकील है। बाहर से कामयाब पर अंदर से अकेला और उदास, परिवार के दबाव में और शायद अपने पिता नवीन रॉय, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, कि अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो एक तयशुदा शादी के लिए मान जाता है।
शादी का दिन आता है।
हाँ, वो विवाह स्थल पर पहुंचता है, एक घर जिसे उसके पिता ने मृत्यु से कुछ समय पहले खरीदा था, और वहां उसकी मुलाकात होती है गिरीन से।
अच्छा।
यहीं से परतें खुलनी शुरू होती हैं, वो सच जो इतने सालों से दबा हुआ था।
जी हाँ।
गिरीन धीरे धीरे सब कुछ बताता है। वो बताता है कि ये घर दरअसल उसने खरीदा है ताकि गुरुचरण का परिवार सम्मान से रह सके। वो बताता है कि उसने ललिता से कभी शादी नहीं की, बल्कि हमेशा एक बड़े भाई की तरह उसका और उसके परिवार का ख्याल रखा है, और ललिता उसने इतने सालों में खुद को सिर्फ और सिर्फ शेखर की ही परिणीता, मतलब ब्याहता माना है।
और फिर वो आखिरी सबसे बड़ा खुलासा, नियति का खेल कहिए या लेखक का कमाल,
वही पता चलता है कि जिस लड़की से शेखर की शादी तय हुई है वो कोई और नहीं बल्कि खुद ललिता है। नवीन रॉय ने अपने आखिरी दिनों में अपने बेटे के दिल की आवाज सुन ली थी, उन्हें अपने बेटे के अटूट प्रेम का एहसास हो गया था, और शायद प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने ही ये रिश्ता तय किया था।
क्या बात है,
एक ही पल में सालों की गलत फहमी, दर्द, दूरी, सब कुछ जैसे हवा हो जाता है। शेखर और ललिता का मिलन होता है, औपचारिक भी और भावनात्मक भी।
इस क्लाइमैक्स में एक अद्भुत नाटकीय विडंबना है ना, मतलब आयरनी। जिस पिता के डर और सामाजिक प्रतिष्ठा के दबाव में शेखर सच नहीं बोल पाया, उसी पिता ने अंत में उनके मिलन का रास्ता बनाया। इसमें क्षमा और मुक्ति का भी सुंदर संदेश छुपा है।
बिल्कुल।
तो अगर हम इस पूरी कहानी के सार को, इसके मुख्य विषयों को समेटने की कोशिश करें तो कई गहरे विषय उभर कर आते हैं।
हाँ, सबसे पहले तो वो प्रेम और सामाजिक रूढ़ियों का सनातन संघर्ष।
फिर ये सवाल कि विवाह का असली मतलब क्या है, क्या वो सामाजिक मान्यता है या दिलों का जुड़ना।
और सबसे ज्यादा शिद्दत से शरद चंद्र दिखाते हैं कि कैसे अभिमान और संवाद की कमी, मतलब मिसकम्युनिकेशन, रिश्तों में जहर घोल सकती है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही समाज में वर्ग भेद, पैसे और ताकत का प्रभाव,
और ललिता के जरिए नारी की गरिमा, उसका लचीलापन, उसकी आंतरिक शक्ति का चित्रण,
परंपरा और आधुनिकता के बीच का वो द्वंद जो उस समय के समाज में चल रहा था,
और अंत में नवीन रॉय के जरिए ही सही क्षमा और भूल सुधार की गुंजारिश का संदेश भी मिलता है।
शरद चंद्र की कहने की शैली के बारे में क्या कहेंगे, मतलब वो कैसे इतनी गहराई तक उतर पाते हैं किरदारों के मन में।
देखिए, उनकी शैली की खासियत है उनकी सादगी और भावनात्मक पकड़। वो तीसरे पुरुष के नजरिए से कहानी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेटर कहते हैं। इससे हमें सभी किरदारों के मन में झांकने का मौका मिलता है, उनके अंदर चल रहे तूफानों को महसूस करने का।
पाठक वो भी देख पाता है जो किरदार खुद नहीं समझ पा रहे होते।
बिल्कुल, जिससे खास किस्म की विडंबना पैदा होती है। उनकी भाषा सीधी है, सरल है, लेकिन दिल को छू लेने वाली होती है। जटिल भावनाओं को भी वो बड़ी सहजता से कह जाते हैं, और प्रतीक भी खूबसूरत हैं, जैसे वो फूलों की माला।
हाँ, वो माला तो उनके अनकहे प्यार और अटूट बंधन का प्रतीक बन जाती है।
तभी तो वो कोथा शिल्पी कहलाए, कहानी के सच्चे कारीगर।
और पढ़ने वाले के मन पर इस कहानी का क्या असर रहता है, या हमें किस तरह की भावनात्मक यात्रा पे ले जाती है?
ये एक गहरी भावनात्मक यात्रा है। आप ललिता के साथ सहानुभूति महसूस करते हैं, उसकी खामोश पीड़ा आपके दिल में उतर जाती है। शेखर को देखकर थोड़ी झुंझलाहट होती है, पर शायद थोड़ी दया भी आती है कि कैसे वो अपनी ही कमजोरियों का शिकार होकर सब कुछ लगभग खो देता है।
उन खोए हुए सालों का अफसोस होता है
बहुत, और अंत में जब मिलन होता है तो आंखों में नमी और दिल में एक सुकून सा महसूस होता है, जिसे शायद कथार्सिस कहते हैं।
तो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे साथ क्या रह जाता है, क्या सोचने पर मजबूर करती है ये कहानी
सोचने पर मजबूर करती है। सामाजिक नियमों की बेड़ियों पर सवाल उठाती है, रिश्तों में भरोसे और खुलकर बात करने की अहमियत बताती है। ये याद दिलाती है कि बाहरी दुनिया के पहचान से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर के सच पर कायम रहना।
और शायद सबसे बड़ी सीख,
हाँ, कि अभिमान मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होकर पूरे रिश्ते को जलाकर राख कर सकता है।
तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी उस प्यार की ताकत दिखाती है जो समाज की दीवारों और इंसान के अपने अहंकार से लड़ता है और अंततः जीतता है, भले ही कीमत चुकानी पड़े।
और ये भी कि रिश्तों को सींचने के लिए भरोसे और संवाद की कितनी जरूरत होती है। एक छोटी सी गलतफहमी, एक अनकही बात जिंदगी में कितना बड़ा फासला पैदा कर सकती है, ये कहानी हमें भूलने नहीं देती।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।